और उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे और प्रोसेसेस समझ नहीं आ रहे थे उनको आज उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा जी कि दिस होल थिंग रिलेट्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज। एज अ रिजल्ट अगर ये लॉ जो है इनका, जाहिर है कि ये तो कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है कि जिसमें लोग बोलेंगे कि नहीं हम जी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, वो तो आ जाती है रॉयल डिक्री और ये फाइनल हो जाता है लॉ। वो कहते हैं जी अगर ये चला, यानी कि ये चलाने की अभी कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अगर ये चला तो देन आमिर साहब आपके लिए ये बड़ी न्यूज है, यूएई विल बिकम द हब ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो आप अपना सारा क्रिप्टो करेंसी का काम जो है यूएई के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा है। रॉयटर्स की ये खबर है जी। और इसके अलावा इसके मुताबिक जो गल्फ स्टेट्स हैं उन्होंने आज बहुत ही क्लियरली इसराइल को बताया कि अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो हम अपना एयर स्पेस बिल्कुल आपको ऑफर नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले तो इन्होंने किया था, तो अब ये चेंज कैसे है? ये चेंज इसलिए आई है कि ईरान ने धमकी दी है इनको कि इसराइल ने मुझको हम धमकी दी है कि वो मेरी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करने वाला है, और अगर मेरे ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हुआ तो यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट। उसके ऊपर आज बड़ा भड़की है फिर जो है गल्फ की स्टेट्स, वरना तो सोए हुए थे अपने मजे से अपने बिजनेसेस कर रहे थे, पैलेस्टीनियंस मर रहे थे तो मरे ना, ऐसा उनका क्या लेना देना है जी। तो ये जो है जनाब, इन्होंने आज गल्फ स्टेट्स ने यूएस को भी कहा है कि तुम भी इसराइल को मना करो ईरान के ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक करने से। आपको पता ही है कि बाइडन साहब ने पहले नतन्याहू साहब को फोन करके कहा था कि बिल्कुल उनके न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसके ऊपर मत करना, क्योंकि जाहिर है आपको पता ही है कि रेडिएशन जो है वो सारी फैल जाती है। आज सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने कहा है कि हम बिल्कुल इसराइल को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे अगर उन्होंने ईरान के ऑयल जो सप्लाईज हैं उनके ऊपर अटैक किया। तेहरान ने कहा था कि वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है रिटेलिएट करेगा। इसराइल ने कहा कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, जिसकी वजह से लग रहा है कि रीजन के अंदर बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो सकती है। इसीलिए अरब स्टेट्स ने आज यूएस को कहा है कि भाई तुम अपना जोर यूज करो इसके ऊपर। आपको पता ही है, कल हमने आपको बताया था कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरकजी, वो पहुंचे हुए हैं सऊदी अरेबिया, जहां पे उनकी मुलाकातें सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ और बाकी लीडर्स के साथ भी हुई हैं। और आज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं कतर, दोहा में थे वो आज, और उन्होंने वहां पे अपने काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। और उन्होंने बहुत आज क्लियरली कहा है अरब स्टेट्स को भी, ईरान ने और इसराइल को भी, कि अगर तुमने हमारे न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर कोई भी अटैक किया तो फिर एन मुमकिन है कि बाकी के जो कंट्रीज हैं जो कि ईरान के साथ अलाइन करते हैं, जिसको कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड प्रॉक्सीज कहती है, इराक है, यमन है, ये सब भी फिर साइमल्टेनियसली इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इसके साथ साथ जो अभी मैं जो मोना अबू अमारा को भी बता रही थी कि इसमें जो बातचीत होनी थी अमेरिका और इसराइल के बीच में, जिसमें कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने यूएस आना था और मुलाकात करनी थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टन से, और जो लॉयड ऑस्टन साहब की भी थी जो ट्रिप से लास्ट मंथ, वो जो अब कैंसिल हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि इसराइल बहुत ज्यादा डिफाइंस दिखा रहा है और शायद यूएस की भी नहीं सुन रहा है। लेकिन उसका फायदा क्या है, यूएस दबा दबा उनको पैसे भी दे रहा है और आर्म्स भी दे रहा है।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री और मिसेस सागा। और यहां पे होती हैं डॉक्टर नाजिया रहमान। आपको डेंटिस्ट्री की कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप उनके पास जाएं। इनका नंबर है 9058721100 एंड चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। जबरदस्त किस्म के खाने, बड़े जबरदस्त हॉल्स, बड़ी जबरदस्त एम्बियंस है। अगर आपको यहां पे अपने इवेंट्स कोई कराने हैं, छोटे बड़े कोई भी, कॉर्पोरेट भी और अपने पर्सनल भी, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9054588888। बड़ी जबरदस्त गोल्फ कोर्स की फैसिलिटीज भी इनके पास हैं। और जनाब विलेज टेस्ट ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं फैसल चट्टा साहब के, आप दोनों रेस्टोरेंट्स में जाकर एंजॉय का मजा ले सकते हैं। तो आप जो मिसेस सागा में है उसमें आप कॉल कर सकते हैं 9052323663, और जो ओकविल में है उसमें 9052262294 पे आप कॉल इनको कर सकते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर ये जो मैं आमिर साहब को भी बता रही थी ना कि अच्छी न्यूज पाकिस्तान के जो बेचारे आम लोग हैं उनके लिए आए, ये पहली अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने वॉलंटेरिली कह दिया है जिनसे के गवर्नमेंट लेती थी, पावर परचेजिंग करती थी, उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के साथ ऑन वॉलंटरी बेसिस, और इससे हेल्प मिलेगी जाहिर है कि बेचारे इन्फ्लेशन हिट जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के उनके। शहबाज शरीफ साहब ने आज उनकी बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट्स हैं हमको दे दें और हम इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, हमें सिर्फ पैसे जो हैं वो दे दें। और आपको पता ही है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जो था वो प्रेशर था कि ये किसी तरह से जो लोगों के बिल इतने बेताचा इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ गए हैं उसको जो है अफोर्डेबल बनाए। तो उन्होंने कहा जी कि ये पहला स्टेप है और इसके अंदर अब जो बिल्स हैं लोगों के काम आएंगे। इसके अलावा हमने आपको कल बताया था कि सऊदी डेलीगेशन बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फली के साथ जो है वो आया हुआ है। तो सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जो हैं उनकी आज मुलाकातें जो हैं पाकिस्तानी जो डिफरेंट डेलीगेट्स हैं उनके साथ हुई हैं। दिखा दें जीशान वो तस्वीर, वो जो आया हुआ है डेलीगेशन सऊदी पाकिस्तान में, तो उनकी मुलाकातें आज हुई हैं। उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा लिमिट नहीं है, कि कोई एक्सटेंड ऐसा नहीं है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो हम पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते हैं। हमको पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेबलाइज करना पड़ेगा और हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है। वो एड्रेस कर रहे थे आज पाक सऊदी बिजनेस फोरम को इस्लामाबाद में, 3 डे के विजिट पे बड़ा हाई प्रोफाइल अपने साथ डेलीगेशन लेकर आए हैं। और वो रेफर कर रहे थे वर्ल्ड बैंक की एक न्यूज को जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत क्विकली रिकवर कर रहा है और उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी 2.8% से इन दिस फिस्कल ईयर। 135 मेंबर का ये सऊदी डेलीगेशन जो है ये कल पहुंचे थे इस्लामाबाद में जैसे हमने आपको बताया था, और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 बिलियन US डॉलर्स के ये एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ करेंगे। फली साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान हमारा जो है वो फ्रेंड्स नहीं है, दे आर आवर फैमिली, और हमारी जो इसमें हमें फॉर्मल अग्रीमेंट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जो है एक फैमिली की तरह जो है वो चलेंगे। और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज जो हैं उनका हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। 2.5 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के साथ भी हुई और उन्होंने दे डिस्कस मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की कि ये जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस डेलीगेशन लेके पाकिस्तान में आए हैं इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों के बीच में टाइज जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। भाई जान उनकी करिए, उन्होंने मजबूरी है बेचारे, उन्होंने मोहब्बत शो करनी है तुहानू, ठीक है। अच्छा जनाब, बड़ी खबर जो पाकिस्तान से थी वो जो आज केपी के चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब, उनको आज उन्होंने एक तो नंबर वन ये कि होल्ड कर लिया है ग्रैंड जिरगा, उनको इजाजत मिल गई थी और उस ग्रैंड जिरगे ने इनको चुना है कि आप जाके एस्टैब्लिशमेंट से और बाकी लोगों से बात करो ताकि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव की जा सके। ये जो मुलाकातें हैं ये चीफ मिनिस्टर साहब ने सीएम हाउस के अंदर की थी और इसके अंदर उन्होंने करंट पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर बात की थी। और ये जो सारी चीजें हैं ये अब बाकी और भी 2 दिन चलेंगी क्योंकि 3 डे पश्तून कौमी जिरगा जो है वो हो रहा है, जिसको के अनाउंस तो वैसे किया था बैन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट ने और उसके ऊपर कल हमने आपको बताया था कि जो मोहसिन नकवी साहब थे उसकी इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी जिरगा तो है उसमें बैठें और बात करें। आज इस मुलाकातों में जो प्रेजेंट थे लोग वो थे केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, फेडरल मिनिस्टर आमिर मुकाम और केपी के दूसरे लॉ मिनिस्टर्स और दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हालांकि आमिर देते बैठे आए हैं, बहरहाल अमीर मुकाम अच्छा जी अमीर मुकाम, तो और भी जो थे वो थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने पार्टिसिपेंट्स का बड़ा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा जी आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, अब हम नई जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे, कंसल्टेशंस करेंगे कि पीस कैसे ला सकते हैं और केपी के मसले कैसे हल किए जा सकते हैं। 2 दिन पहले आपको पता ही है कि जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA जो है इस्लामाबाद में उसने सील कर दिया था केपी हाउस इस्लामाबाद में। इसके ऊपर बात करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है कि इसको फौरन खोला जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने आज ये पिटीशन हियर कर रहे थे जो फाइल की थी केपी की गवर्नमेंट ने। CDA के जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी कि इन लोगों ने बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और इनके बहुत सारे ड्यूज जो हैं वो भी आउटस्टैंडिंग हैं। हमने इनको पहला नोटिस भेजा था 2014 में लेकिन अभी तक इन्होंने ड्यूज को क्लियर नहीं किया। जस्टिस फारूक ने कहा CDA को कि ये इशू जो है ये प्रॉपर्टी के सील तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन आप अगर ये सब चीजें किसी को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा कि आपको जब ये आप सील करने वाले थे इसको तो भी फिर भी आपको एक नोटिस भेजना चाहिए था बिकॉज दे वर जस्ट टेकन ऑफ गार्ड। तो ये बड़ा ही शेमलेस है एक्ट है कि एक प्रोविंशियल हाउस को इस तरह से सील किया जाए तो उसको फौरन खोलें। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है जी, उसने जो इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमैट्स हैं उनको कहा है कि आप अपनी जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल लिमिट करें ड्यूरिंग SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट और इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सिटी, और आप जो है आप अपने ज्यादातर उन्होंने कहा है जी कि आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव और रेड जोन के एरियाज के अंदर ही रहें। यहां पे बहुत सारे आपको पता ही है मेजर फॉरेन लीडर्स जो हैं वो आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब इस समिट में हिस्सा लेने के लिए जो कि हो रही है अक्टूबर 15th और 16th में। उन्होंने कहा जी कि ये सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मलाइज रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री के ट्रुप्स जो हैं 5th अक्टूबर से लेकर 17th अक्टूबर तक इस्लामाबाद में रहेंगे अंडर आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि डिग्निटरीज और डेलीगेट्स को किसी किस्म का कुछ प्रॉब्लम ना रहे, और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि जी आप जो डेली ट्रैफिक अपडेट्स इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस देगी और शेयर करेगी पुलिस के वेरियस चैनल्स के ऊपर, प्रेस रिलीजें भी और सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, उसको आपने हर हाल में फॉलो करना है। ये एक पोस्ट जो है जी सुबह से एक्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली चल रही थी जिसमें के कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं केपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने शायद रिमूव कर दिया है बैरिस्टर मोहम्मद अली सेफ को जो कि उनके जो है एडवाइजर हैं ऑन इन्फॉर्मेशन, और ये काफी वायरल हुई हुई थी। यानी कि आप इसका अंदाजा लगाएं कि ये जो है, क्योंकि इन्होंने असल में हुआ क्या था कि इन्होंने कहा था कि ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर जिरगा नहीं होना चाहिए, तो शायद ये कहा जा रहा था कि चूंकि इन्होंने ये बात की है तो चीफ मिनिस्टर साहब शायद इनसे नाराज हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जर्नलिस्ट शाकिर महमूद अवान ने एक्स के ऊपर ये न्यूज दी और उसको 63,000 व्यूज मिले, इसको रीशेयर भी किया गया 1,900 टाइम्स। फॉर्मर पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन शहजाद यूनस जो हैं उन्होंने भी जब इसको जो है वो शेयर किया तो 47,000 इसको व्यूज आए। पीटीआई के अपने खुद के वर्कर्स जो हैं जब उन्होंने इसको शेयर किया तो 80,000 व्यूज इसके आए। अलबत्त ये सारा ड्रामेबाजी के बाद केपी के इन्फॉर्मेशन एंड पीआर डायरेक्टर जनरल जो हैं मोहम्मद इमरान, उन्होंने कहा जी कि ये जो नोटिफिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बिल्कुल सैक नहीं किया गया, वो बड़ा क्लोजली जो है चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है जी, खुश हो आमिर साहब। आमिर खान साहब जो है, ये वाला आमिर नहीं, जो एक्टर आमिर खान है जी, और उसका बेटा जुनेद खान, हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि वो KBC में बिग बी के शो पे आएंगे, और अब जो है सोनी एंटरटेनमेंट टीवी ने कहा है कि ये एपिसोड हम रिलीज करने वाले हैं बिग बी की 82nd बर्थडे जो कल होगी 11th अक्टूबर को उसके ऊपर। लेकिन जो क्लिप है उसमें देखा जा रहा है कि दोनों ही आमिर खान भी और बिग बी जो है वो अपने बच्चों को एडवाइस की बात कर रहे हैं कि हमने इनको क्या एडवाइस दी। तो आमिर खान कह रहे हैं कि मैं तो अपने बेटे को बार बार जब ये स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहा था और ये रिजेक्ट होता जा रहा था तो मैंने इसको कहा था तुम एक्टिंग मत करो, फाइनली फिर इसको महाराज के लिए पिकअप कर लिया, तो अब मैंने इसको एडवाइस किया है कि तुम पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बस के अंदर बैठ के सफर करो और वहां पर कुछ दिन रहो और वहां का लोकल कल्चर एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये चीजें जो तुम्हें सीखने को मिलेंगी ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ बिग बी ने भी फिर उसके ऊपर कहा कि एग्जैक्टली जनाब यही सेम एडवाइस मैंने भी अपने पुत्र को दी है अभिषेक बच्चन को। जावेद शेख साहब ने एक जनाब रिसेंट इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है जी कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल शराब पी के जो है उसमें वेस्ट कर दिए, और मैं इसीलिए सब लोगों को कहता हूं कि शराब मत पियो। इन्होंने शराब छोड़ी थी July 31st, 1991 को, और वो कहते हैं उसके बाद मैंने शराब को नहीं छुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा बहुत सारा जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पर्पस जो मेरी जिंदगी का था वो जाया होता जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा रिग्रेट करता हूं मेरी अल्कोहलिज्म की वजह से, जो मेरी पहली मैरिज थी हनी ईरानी के साथ वो भी खराब हो गई थी, मेरा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेता था, इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि आप लोग मत पियो और मत इस तरह की बुरी आदत में पड़ो। वो कहते हैं जी कि मैं ये जो सब गलतियां तो हुई हैं मुझसे, फिर उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने शराब छोड़ दी। महिमा चौधरी साहबा जो हैं उनका भी एक इंटरव्यू आया है जब उन्होंने काम परदेश में किया था शाहरुख खान के साथ, उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि जब इनिशियली मैं इनके साथ काम करने गई तो 15-20 दिन तो शाहरुख खान साहब आए ही नहीं सेट पे, हर कोई इंतजार कर रहा था और कहता था कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं थे। और फाइनली 20 दिन के बाद जब शाहरुख खान साहब आए तो सब उनके गिर्द जमा हो गए और उन्होंने कहा जी हम तो आपका वेट कर रहे थे, हाय आप हमको बोलो ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। तो बातचीत जब शुरू हुई तो हर कोई बैठ के उनकी बात सुनता था क्योंकि उनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं सुनाने के लिए। और हम देखते कहते खासतौर पर मैं तो बैठ जाती थी, देखती थी वो अपने टेक्स कैसे ले रहे हैं, सीन्स कैसे कर रहे हैं, लाइन्स कैसे पढ़ रहे हैं, डांस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सारे उस वक्त नए थे। तो हमने फिर इनसे बहुत कुछ सीखा। और जनाब आफ्टर 65 years, इंग्लैंड हैज बिकम द सेकेंड टीम टू पोस्ट ओवर 700 runs अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ 3-match सीरीज एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने 790 for 3 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ जो था वो पोस्ट किया था। जो इंग्लैंड जो है उसने तो जो है अब 800 प्लस रन्स जो हैं फोर्थ डे में कर दिए हैं, मेकिंग इट द हाईएस्ट टोटल इनिंग्स टोटल अगेंस्ट पाकिस्तान। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21st सेंचुरी इस टीम ने जो है जो डिफरेंट टीम्स हैं उन्होंने 800 से ज्यादा रन सिर्फ 4 बार किए हैं क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। लास्ट टाइम श्रीलंका ने 952 रन्स फॉर 6 बनाए थे इंडिया के खिलाफ इन 1997। इसके अलावा इंग्लैंड ने 849 रन्स बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन 1930, 903 रन्स बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 1938। तो इस तरह से आज जो उन्होंने अपनी जो इनिंग्स डिक्लेयर की है वो 823 for 7 पे डिक्लेयर की है। तो 4 में से 3 बार तो इंग्लैंड ने ही जो है ये 800 से ज्यादा रन बनाए हैं। और इसमें जब इन्होंने आज मैच शुरू किया तो उसमें जो हैरी ब्रुक है उन्होंने 317 रन्स बनाए हैं और जे रूट ने 262 रन्स बनाए। इसके अलावा रूट साहब जो है ही हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड टू मेक 20,000 इंटरनेशनल रन्स। तो हम तो सोच रहे थे पाकिस्तान का 565 बड़ा ही स्कोर है जी जब उन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। ए देखो जरा, ए देख लो फिर हैं, ए वड्डे मुल्का दिया वड्डियां गल्लां हैं। कोई नहीं, पाकिस्तान बेचारा छोटा मुल्क है ना, तो कोई नहीं, ऐसे हो जाता है कभी कभी उससे। और जनाब फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन जो है अजहर अली वो बिल्कुल फ्रंट रनर है टू गेट अ वेरी वेरी सीनियर पोजिशन इन पीसीबी। और ये यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, पीसीबी ने एडवर्टाइज किया था पोस्ट ऑफ डायरेक्टर यूथ क्रिकेट ऑन इट्स वेबसाइट और इसकी डेडलाइन जो है अक्टूबर 31st है। उन्होंने कहा जी कि जो भी कोई कैंडिडेट इसके लिए अर्जी दे रहा है उसने एटलीस्ट 50 टेस्ट मैचेस जरूर खेले हुए। अजहर जो है इस पोस्ट के लिए फेवरेट है क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि मैं जूनियर प्लेयर्स के साथ काम करना चाहता हूं, सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता हूं। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो भी बड़े जो हैं कीन हैं, वो करना चाहते हैं टीम को मेंटोर। और इनको काम दिया जाएगा कि भाई ये जो अंडर 13 और अंडर 19 के बच्चे हैं इनको आपने कोच करना है, इनको आपने बनाना है, टैलेंट हंट करना है, ग्रूम करना है। और फिर इसलिए भी ये अदारा बनाया जा रहा है ताकि ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहे। राफेल नडेल जो है जी ये आज की हमारी आखिरी स्टोरी है। 38 ईयर्स उनकी एज है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि उन्होंने कहा जी कि मैं रिटायर कर रहा हूं आफ्टर डेविस कप फाइनल्स जो कि नवंबर में होने वाले हैं। और इन्होंने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, आइकॉनिक पर्सनैलिटी बने हैं, ग्लोबल रिस्पेक्ट जीता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने कहा जी कि मेरे कुछ आखिरी जो अब साल थे बहुत ही डिफिकल्ट रहे, स्पेशली जो लास्ट 2 ईयर्स हैं उसमें मैं बहुत ही डिफिकल्टी फेस कर रहा हूं। ये जाहिर है कि रिटायर होने का जो मेरा डिसीजन था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। मैंने कुछ टाइम, मुझे काफी टाइम लग गया सोचने के लिए, ये डिसीजन बनाने के लिए, लेकिन अब मुझे बनाना ही पड़ा है। लाइफ जो है वो उसमें एवरीथिंग हैज बिगनिंग एंड एन एंड, तो मुझे लगता है कि मैं अपने एंड पे पहुंच गया हूं। पिछले 20 साल में इन्होंने 92 टाइटल्स जीते हैं और इसके अलावा सानू कोई मिलियन डॉलर नहीं दे रहा और इन्होंने प्राइज मनी 135 million US dollars जो है जीते हैं टेनिस खेड खेड के। साढ़े भी मां बाप कोई सानू खिलाड़ी शिलाड़ी बना देते सी भी कोई कमा लेंदे 4 पैसे हैं और देख लो ऐसे पढ़ा लिखा के आपने जाया किया हमारे पे। एंड ही हैज वन, इसने जो था 2004 में सबसे पहले एज अ टीनेजर खेलने जब शुरू किए थे तो उन्होंने अपना पहला जो है उस एज में डेविस कप जीता था। तो वो कह रहे हैं कि डेविस कप को छोड़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अब रिटायर ही हो जाना चाहिए टेनिस की गेम से। तो जनाब ये थी हमारी आज की खबरें।
तो ये थी गर्मा गर्म और खट्टी मीठी खबर।
यस
और कोई दो चार रह गई हूँ तो वो भी सुना दें।
नहीं वो अब विमेंस क्रिकेट की थी, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है।
मतलब औरतें नाराज हो जाए।
हाँ हाँ बस कोई बात नहीं,
फैन भी पता ना खवातीन भी।
हाँ कोई नहीं कोई नहीं, अब कल सुना,
कोई बात नहीं, हम आपको कल सुना देंगे जनाब। ये थी आज की खट्टी मीठी और गर्मा गर्म खबरें, और अब तकरीबन जाने का वक्त जो है वो करीब आ गया, मतलब ऊपर मतलब प्रोग्राम खत्म होने का वक्त आ गया भैया ना। आप लोग जो है ना मतलब आप पहुंचा के ही सांस लेंगे। नहीं जनाब, आप जो है वो प्रोग्राम अब खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा दुआ का है, और फिर स्टेशन आईडी का टाइम होता है जैसा कि आपको मालूम है। और शाजी जी को आप इजाजत दे देते हैं मेरे ख्याल से, और उनसे कहते हैं कि इंशाल्लाह उनकी जिंदगी रही नहीं बल्कि सेहत रही और वो जिंदा रही। तो शाजी जी आपसे
कल
फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।
थैंक यू आमिर, थैंक यू,
बहुत शुक्रिया। और तमाम सामईन का जनाब बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनते हैं 770 एएम डायल पर साजो आवाज प्रोग्राम। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट eawaz.com पर, और यहां रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। रेडियो सुनने के लिए आप एक नंबर भी डायल कर सकते हैं 6478724900, 6478724900 पर डायल करके आप क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी रेडियो भी सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट eawaz.com, इस पर रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। तमाम ही एडवर्टाइजर्स के नंबर भी आपको हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए, और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कॉन्टेंट में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हमारा टिकटॉक ई आवाज के नाम से, टिकटॉक में जाके आप सर्च कर सकते हैं ई आवाज, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। वहां भी बहुत ज्यादा मतलब जो करंट फॉरेन न्यूज आती है उसके स्मॉल क्लिप्स आपको हमारी टिकटॉक पर भी मिल जाएंगे। हमारा चैनल ई आवाज टीवी तमाम ही आईपीटीवी बॉक्सेस पर मौजूद है, इसे आप पाकिस्तानी या उर्दू कैटेगरीज में ढूंढ लें, और ढूंढने के बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि रिमोट के येलो बटन को प्रेस करें, ये आपके फेवरेट में एड हो जाएगा। अब आपको उसको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये थी सारी हमारी ऑफिशियल ऐप ई आवाज, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तमाम यानी iOS और एंड्रॉयड पर मौजूद है। तो हमारी ऑफिशियल ऐप ई आवाज के नाम से भी आप इसको डाउनलोड कर लें, तो आप यहां भी हमारा वेबसाइट रेडियो एंड टीवी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। चले जनाब, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आरपा मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, नवदीप की तरफ से, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद की तरफ से अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
तुझसे दुआ मांगता हूँ। WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Oh, अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी
करता क्यों, हदों से हूँ गुज़र।
नजरता में जरा 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 तुम सो दर असल सांसों का साग हो दिल में मेरे छुपा जो वही राग राज हो कल भी मेरा तुम ही हो मेराज हो
I'm not afraid to die.
الفاظ جو وہ ضرورت ہو گئے تقدیر کے کچھ فیصلے جو غنیمت ہو گئے بدلا ہوا ہر پل ہے رہتی کماری ہر جگہ پیار تھا جانا ہوا ساتھ کب سے میں حضور کوششیں ذرا ہے نگاہوں کی تجھ دیکھنے کی ہو خطا ضرور دیوانگی کہوں اسے یا ہے میرا فتور کوئی
جیسے تو بھی
दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए, दिल को तेरी मौजूदगी कैसा तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए शामो सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जित हो मेरी उतनी दफा तेरे सिवा चाहिए, हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए, जीने को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए, चाहिए अंजाम जो चाहे मेरा
WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੌਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੀਅਰ ਪਾਲ ਯੈਬ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲ NDP ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਅਰ ਪਾਲ ਯੈਬ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ